ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून्वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणाललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम।
हरे कृष्ण। सबसे नम्र निवेदन है कि जिस किसी के पास मोबाइल फोन है कृपया वो स्विच ऑफ कर दे या उसे साइलेंट मोड में कर दीजिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं सभी नासिक भक्तों का धन्यवाद देना चाहूँगा और अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों के स्नेह और प्रेम के वजह से मैं फिर से खींचा चला आया। देश विदेश में प्रचार करने के पश्चात इस निर्णय पर मैं आया हूं कि नासिक में कुछ चुंबकीय शक्ति है। चुंबक आप लोग जानते हैं ना, तो यहां पर कुछ ऐसी ही चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स जिसे कहते हैं। और पिछले हफ्ते मैं देवलाली का कार्यक्रम कर रहा था तो एक उदाहरण मुझे ध्यान में आया कि नासिक के बाहर प्रचार तो होता है, विशेष रूप से मैं अपने संबंध में कह रहा हूं, और उसमें भी बहुत आनंद आता है, परंतु नासिक के बाहर का प्रचार उस प्रकार से है जैसे कोई बिना स्वीट के फीस्ट खा रहा हो। तो स्वीट खाने में आया और यदि आप लोगों का स्नेह और आपकी कृपा बनी रहेगी तो आशा करते हैं कि आप लोगों की सेवा करते रहेंगे इस प्रकार से। श्री राधा गोपीनाथ भी आ गए, कम से कम स्क्रीन पे हैं। तो आज हमारे इस रविवार के कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। क्या सभी को दिख रहा है स्क्रीन पर ठीक से? पीछे दिखता है सबको? जीवात्मा के इंद्रियों का प्रगति पथ। हालांकि अक्सर हम जीवात्मा के दुर्गति पथ के विषय में ज्यादा सुनते हैं और जीवात्मा के इंद्रियों की दुर्गति पथ के विषय में, क्योंकि इस भौतिक संसार का नियम है कि इस भौतिक संसार में जो कुछ बनाया गया है वो नितांत अंततः दुर्गति के पथ पर ही आ जाता है। जैसे कि अंगूर का मौसम चल रहा है, अंगूर जब ताजा होता है तो जो सत्वगुण के लोग होते हैं उन्हें खाने में अच्छा लगता है, परंतु उसी अंगूर को आप ऐसे ही रख दो, हालांकि जो अंगूर की खेती करते हैं वो तो जानते हैं कि उस सत्वगुणी अंगूर को भी ताजा बनाए रखने के लिए कितने केमिकल लगाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो दुर्गति के पथ पर चला जाएगा। यदि ऐसे ही उस अंगूर को रख दिया जाए तो कुछ दिन बाद फिर जो तमोगुणी व्यक्ति है बहुत रुचि लेकर उसका इस्तेमाल करेंगे, चाहे कोई फल हो चाहे हमारा शरीर। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि हम जो अन्न खाते हैं और जिस अन्न को खाकर हम हमारे शरीर को जिला रहे हैं उस अन्न को आप दो दिन रख दो वो सड़ जाता है कि नहीं? चावल या दाल या कोई भी सब्जी या कोई भी अन्न है उसे दो तीन दिन ऐसे ही रख दो वो सड़ना शुरू हो जाता है अन्न। तो उसी अन्न को हम अंदर ग्रहण कर अपने शरीर को जिला रहे हैं, तो यह प्रश्न पूछा गया है, तो फिर यह शरीर क्या सड़ेगा नहीं? जब वो अन्न जो कि ईंधन है इस शरीर के लिए, वो अन्न सड़ने वाला है, तो यह शरीर भी अवश्य दुर्गति के पथ पर। यहां तो हम स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं, फिर हमारे शास्त्र कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भी वो हर समय इस भौतिक संसार में दुर्गति के पथ पर। अंग्रेजी में इसे कहेंगे लॉ ऑफ डिग्रेशन, या जो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन जिसे कहते हैं, कोई भी चीज ऊपर फेंको वो चीज नीचे आएगी। तो सब कुछ नीचे खिंचाव है, हर वस्तु, हर एक व्यक्ति की चेतना का, स्थिति का। तो फिर हम ये शीर्षक की चर्चा भी कैसे कर सकते हैं कि हम जो जीवात्मा हैं, हमारे इंद्रियों का कोई प्रगति पथ भी है यहां पर? यहां पर तो सब कुछ उल्टा ही दिख रहा है, ऊर्ध्वम मूलम अधःशाखम, सब उल्टा, ये वृक्ष ही उल्टा है यहां पर। तो प्रगति का पथ क्या है कि भगवान गीता में कहे हैं कि जब कोई भक्ति मार्ग के संपर्क में आता है, चाहे वो थोड़ी सी मात्रा में भी भक्ति मार्ग के संपर्क में आए, स्वल्पम भगवान ने कहा है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि यदि वो स्वल्पम भक्ति भी कर लेता है तो वह सबसे बड़े भय या महतो भया जिसे कहा गया है उससे बच सकता है। अर्थात केवल वो सबसे बड़े भय से ही नहीं बचता, बल्कि वो प्रगति के पथ पर आ जाता है। अब यदि हम इस प्रगति के पथ का क्रम देखेंगे तो हमें कुछ थोड़ा सा इसमें संदेशा मिलेगा कि हाँ, हम जो भक्ति के मार्ग में, साधना भक्ति में लगे हैं, हमारा भविष्य थोड़ा उज्जवल दिख रहा है। तो जीव की दशा के 6 लक्षण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि हम जब प्रगति पथ, या जीव के विशेष रूप से इंद्रियों, क्योंकि हम ये जो शरीर धारण किए हैं, बिना इंद्रियों के शरीर का कोई मायना नहीं, तो इसके 6 लक्षण हैं हमारी दशा के। सबसे पहला लक्षण हमारी पतन दशा। तो आप मायूस मत होना कि अरे सबसे पहला मुद्दा ही पतन दशा बता रहे हैं, तो यहां से प्रगति क्या है? क्योंकि जब तक हमारी पतन दशा नहीं पता लगेगी, तब तक हम कितना प्रगति कर रहे हैं ये इसका अंदेशा नहीं आएगा हमको। जैसे श्रील प्रभुपाद ये छोटी सी कथा कहा करते थे कि एक बड़ा व्यापारी, उसने अपने पुत्र को गणित सिखाने के लिए एक मास्टर जी को रखा ट्यूशन पर। तो मास्टर जी रोज गणित सिखाते थे इस व्यापारी के पुत्र को। तो एक दिन व्यापारी, उसने अपने कानों से सुना कि सुनता हूं क्या पढ़ा रहा है मेरे इस पुत्र को गणित। तो मास्टर जी पुत्र को पूछते हैं उसके, बेटा 5 और 5 कितना? तो बेटा बोलता है, मास्टर जी 5 और 5 9। तो मास्टर जी बोलते शाबाश बहुत अच्छा। तो अभी व्यापारी उसने अपना कैलकुलेटर निकाला कि मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूं, 5 और 5 9 कैसे होता है। तो उसे लगा कि ये गणित का मास्टर है, ये गलत थोड़ी हो सकता है। तो कैलकुलेटर में जब उसने कैलकुलेट किया तो 5 और 5 10। तो उसने सोचा मैं शायद गलत सुन लिया होऊंगा कुछ। तो फिर से मास्टर जी पूछते हैं, फिर से बोलो बेटा 5 और 5 कितना। तो फिर से वो बोलता है 5 और 5 9 शाबाश बहुत अच्छा। तो व्यापारी वो अंदर आके वो मास्टर जी को पूछता है, ये मास्टर क्या सिखा रहा है तू, और शाबाशी दे रहा है, वो बोलता है 5 और 5 9 उसको शाबाशी देता है तू, इसके लिए पैसा दे रहा हूं तुमको। मास्टर जी ने कहा, अरे आपका पुत्र प्रगति के पथ पर है, कल जब मैंने पूछा था 5 और 5 कितना तो 8 बता रहा था। तो कल से बहुत प्रगति कर ली, 9 पे पहुंच गया। तो श्रील प्रभुपाद ये बता रहे थे, क्योंकि उस व्यापारी ने अपने पुत्र की पतन दशा नहीं देखी थी, कि पतन दशा ये थी कि वो बहुत पीछे था उस गणित में। तो उस पतन दशा को देखते हुए मास्टर जी शाबाशी दे रहे थे। जैसे हम हाल ही में एक मित्र से मिले, दूर का मित्र था, और काफी दिनों बाद मैं इस व्यक्ति से मिल रहा था। बहुत वजन हो गया था इस व्यक्ति का, वजन बहुत बढ़ गया था ऐसा मुझे दिख रहा था। तो एक दूसरे व्यक्ति ने जब उसको देखा तो दूसरा व्यक्ति कहते, अरे बहुत पतले हो गए। तो मैं जब देख रहा था तो मैंने सोचा किसी पीछे किसी और को कह रहा होगा। तो फिर से, अरे इतने पतले कैसे हो गए एक महीने में इतना। तो क्योंकि मैं बहुत समय बाद इस व्यक्ति को देख रहा था, तो पहले इस व्यक्ति का वजन 120 किलो था और एक महीने में 20 किलो कम किया इस व्यक्ति ने, तो उस दृष्टिकोण से बहुत पतला हो गया था वो 100 किलो। परंतु यदि हमें कोई कहे, क्या 100 किलो का व्यक्ति आप उसे पतला कहेंगे या क्या कहेंगे? तो दृष्टिकोण, दृष्टिकोण किस हिसाब से देखा जा रहा है कि पहले की दशा क्या। तो इसलिए जब हमारी पतन दशा हम समझेंगे तब जाकर, जैसे कोई बीमारी से बाहर आता है तब जाकर उसे समझता है कि असली स्वास्थ्य क्या है। तो पतन दशा के पश्चात फिर जीव के इंद्रिय भोग का कार्यक्रम, कि जिस कार्यक्रम के लिए हम सब जीवात्मा छुट्टी लीव एप्लीकेशन भरकर आए गोलोक वृंदावन से यहां, तो कौन सा कार्यक्रम। तो ये भी एक स्थिति है हमारे प्रगति के पथ पर, हमारे इंद्रियों के प्रगति के पथ की एक ये स्थिति है। अब इसके पश्चात फिर वो कार्यक्रम देखने के पश्चात साक्षात्कार आता है कि कुछ और कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, इस कार्यक्रम में कुछ दम नहीं है। तो साक्षात्कार की फिर शुरुआत होती है। चौथी स्थिति, इंद्रिय भोग के विषय में भगवान श्री कृष्ण का मत क्या है। हम उनका मत तो लेकर आए नहीं थे, उनसे पूछकर आए नहीं थे कि हम नीचे जा रहे हैं अपने कार्यक्रम को कराने के लिए, तो आपका क्या मत है। परंतु भगवान फिर आते हैं और भगवान फिर हमें समझाते हैं कि भाई इंद्रिय भोग का जो तुम्हारा कार्यक्रम है, मेरे अनुसार मेरा मत क्या है। तो ये मत भगवान का समझना, ये भी एक प्रगति का पथ है। हमारे इंद्रियों के प्रगति का एक लक्षण है ये। फिर समाधान की प्रक्रिया शुरू होती है कि जब हम भगवान के मतानुसार चलते हैं तो हमारे समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और अंततः इंद्रिय भोग की शुद्ध अवस्था। कि वो कौन सी शुद्ध अवस्था है, इंद्रिय भोग को नाकारा नहीं गया है, हमारे इंद्रियों को हमें मारना नहीं है, परंतु उन इंद्रियों को उनकी शुद्ध अवस्था में लाना है। और यही भक्ति मार्ग का कार्यक्रम है, यही भक्ति पथ की अंततः सर्वोच्च सिद्धि है। तो सबसे पहला, जीव की पतन दशा भगवान गीता में बताते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये श्लोक काफी आसान है समझना। अंतिम लाइन, प्रकृति, इस प्रकृति में, इस प्रकृति के स्थान में कर्षण हमारा हो रहा है, कर्षति। और भगवान स्वयं अपने मुख से ये श्लोक कहे हैं। हमारी पतन दशा सबसे अच्छा भगवान ही देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हालांकि मेरे अंश हैं, ये सारे जीव मेरे अंश हैं, ममई अंश सनातन भी हैं, क्योंकि मेरे अंश हैं इसलिए सनातन तो होना ही चाहिए इनको। सनातन का अर्थ क्या है? न तो जिसका कोई भूत है न भविष्य, अर्थात कोई डेट नहीं हम उस पर लगा सकते कि हां जीव का बर्थ डेट ये है और जीव का डेथ डेट ये है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सनातन। तो भगवान कहते हैं कि हम उनके अंश हैं, हम सनातन हैं, तो हमें लगेगा तो फिर तो अच्छा है, क्या प्रॉब्लम क्या है। हां आगे बताते हैं, मन षष्ठानी इंद्रियाणी, कि ये मन और पांच इंद्रिय कितना हो गया, छह, बराबर ना, पांच और एक छह, प्रगति के पथ पे। षष्ठानी इंद्रियाणी, कि ये मन को भी एक इंद्रिय कहा गया है, वो हमारे पांच इंद्रियों का सुपरवाइजर है वो। तो ये जो छह इंद्रियां हैं मन को सम्मिलित करते हुए, भगवान कहते हैं कि इसका दुरुपयोग कर रहा है ये जीव, इसीलिए इस प्रकृति में कर्षण, कर्षति। श्रील प्रभुपाद अक्सर इस श्लोक को कहते हुए कहा करते थे, कुश्ती लड़ रहा है प्रकृति से, कुश्ती लड़ रहा है जीव। अब देखिए हमारा जो अंतिम मुद्दा होगा उसमें हम क्या चर्चा करने वाले हैं, कि यही मन और यही इंद्रियों को कैसे हम शुद्ध अवस्था में लगाएं। तो ये जो मन और इंद्रियां हैं ये दो तरफा काम करती हैं। जैसे बहुत सी वस्तुएं हैं जिन जो अलग अलग प्रकार या दो तरफ काम करते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे एक चाकू का, एक चाकू वो किसी की जान भी ले सकता है और किसी को जान दे भी सकता है। प्रभुपाद कहा करते थे जब वो किसी सर्जन के हाथ में है तो किसी को किसी की किसी को जान दे सकता है, और किसी कसाई के हाथ में वही चाकू किसी की जान ले सकता है। तो वैसे ही हमारा मन, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय, कि कारण बनता है ये मन हमारे बंधन का भी और हमारे मुक्ति का भी और इंद्रियां भी। तो इसलिए हमें समझना है कि सबसे पहले हमारी पतन दशा का कारण क्या है, और अक्सर वो कारण नहीं ढूंढने के वजह से लोग उन्हीं इंद्रियों और उसी मन के वशीभूत होकर अपनी पतन दशा में और ज्यादा धंसते हैं, क्योंकि उसी मन और उसी इंद्रियों को भोगने के लिए तो हम इस भौतिक संसार में अवतीर्ण हुए हैं। तो ये जो सबसे पहली हमारी पतन दशा की स्थिति है, इसमें हमें हम ज्यादा चर्चा करना आवश्यक नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कौन सी दशा में। ये उसी प्रकार से हुआ जैसे कि किसी कैंसर हॉस्पिटल में सब कैंसर पेशेंट हैं तो क्या चर्चा करेंगे। अब सभी जानते हैं कि भाई तुमको भी कैंसर मुझे भी कैंसर, हाँ भाई थोड़ा वैरायटी है, तुमको कौन सा ब्लड कैंसर, अच्छा मुझे बोन का है, बोन का थोड़ा अलग। तो करके भी चर्चा कितनी करेंगे वो लोग। तो वैसे ही हम सब जानते हैं कि हमारी ये पतन दशा कैसी है, खाली उसमें अलग अलग माया देवी ने क्या किया है कि वैरायटी दे दिया है। जैसे कि इस भौतिक संसार में हम अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग का वैरायटी ढूंढ रहे हैं ना, उसका आविष्कार भी कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं वो इंद्रिय भोग, अलग अलग प्रकार से इंद्रिय भोग हम कैसे कर सके उसका वो आविष्कार कर रहे हैं। अब देखिए दो कार्यक्रम चल रहे हैं, एक तरफ वैज्ञानिक और ये जो भी जो अपनी बुद्धिमता यूज कर रहे हैं ये हमारे लिए अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग का आविष्कार कर रहे हैं। तो माया देवी भी, उनकी फैक्ट्री बंद नहीं हुई है, ये फैक्ट्री चालू है तो उनकी फैक्ट्री भी चालू है। उनकी फैक्ट्री में क्या चल रहा है कि ठीक है एक और नया इंद्रिय भोग का आविष्कार वैज्ञानिकों ने किया, तो माया देवी ने एक और नया तरीका निकाला मरने का। पिछले कुछ एक साल आप लो, 50-60 साल लो पीछे, तो ऐसी बीमारियां ही नहीं थी जो आजकल की बीमारियां होती हैं। हमारे एक भक्त, उनको इस प्रकार की कोई बीमारी हुई है कि डॉक्टर भी नहीं कोई डायग्नोस कर पा रहे, सब कुछ एक्सरे, ये ग्राफी वो ग्राफी सब कुछ निकाल लिया, वो ग्राफ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है क्या बीमारी है, न कोई बैक्टीरिया न कोई वायरस, परंतु जो व्यक्ति है वो तो बीमार अवस्था में। तो डॉक्टरों ने भी हाथ ऊपर कर दिए, केवल हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो होता है डॉक्टर कई बार आते हैं आईसीयू से बाहर और सगे संबंधी ऐसे बाहर बैठे रहते हैं, तो आईसीयू से बाहर आते हैं फिर वो थोड़ा सर नीचा करते हैं, फिर परिवार वाले दौड़ते हुए आते, डॉक्टर साहब क्या हुआ, तो फिर वो जो ये होता है स्टेथोस्कोप, वो कान का उपकरण, वो निकालते हैं और दूसरी तरफ देखते हुए कहते हैं अब दुआ काम करेगी, अब दवा नहीं दुआ। तो ऐसी ऐसी बीमारियां आजकल आ रही, और ये सब क्योंकि एक कृत्रिम जीवन हो रहा है। जितना ज्यादा हमारा जीवन कृत्रिम या आर्टिफिशियल होगा उतना ज्यादा ये जो एक, मैं दो दिन पहले ही मेरे बुआ के लड़के वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उन्होंने पढ़ाई की है उसकी, तो उनको मैंने पूछा कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही, नहीं करते प्रैक्टिस। तो मैंने कहा क्यों, कि आजकल ऐसी बीमारियां होती कि हम तंग आ गए, किसको किसको ठीक ठीक भी नहीं होते कोई, तो प्रैक्टिस ही छोड़ दी उन्होंने और कोई बिजनेस पकड़ लिया। अब वो स्वयं खुद ही वो बता रहे थे कि उनकी पत्नी को धीरे धीरे दिखना बंद हो गया दोनों आंखों से, अब कुछ दिखाई नहीं देता दोनों आंखों से, और कारण कोई नहीं जानता क्या कारण है। यहां तक कि जर्मनी तक भेज दिया, परंतु वहां पर वो जर्मन डॉक्टर भी नहीं कारण ढूंढ पाए कि ये अचानक रोशनी कैसे चली गई आंखों की। तो हम देखिए कितने सर्वसाधारण तरीके से ये हमारी इंद्रियों को ले लेते हैं, जैसे देखना आंखों से। क्या हम कभी इस भय में, इस आशंका में रहते हैं कि हो सकता है कि एक दिन मेरी भी ऐसी पतन दशा हो कि मैं उगता हुआ सूर्य या रोशनी भी नहीं देख पाऊं? इसलिए यहां पर प्रकृति स्थानिक कर्षति, ये जो कर्षण हो रहा है, ये इंद्रियों का दुरुपयोग इसके वजह से है। अब हालांकि भगवान ने हमारे स्थिति का मुआयना कर इस श्लोक में कह दिया कि ये हमारी स्थिति है, परंतु यदि हम हमारे समाज में देखें तो हमारे समाज में हम कौन सा कार्यक्रम चालू रखे हैं, जीव के इंद्रिय भोग का कार्यक्रम। और देखिए ये संस्कृत का श्लोक है और एक मुनिवर ने कहा है, इन श्रेष्ठ मुनिवर का नाम है श्रीमान चार्वाक मुनि। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मी भूतस्य देहस्य कुतः पुनः आगमन भवेत। सुनने में कितना अच्छा लगता है संस्कृत, और सबसे पहली जो लाइन है वो तो वाह वाह, यावत जीवेत सुखम जीवेत। अब देखिए ये जो स्थिति है, ये स्थिति एक जीव के प्रगति पथ की स्थिति है इंद्रियों के, क्योंकि इसके आगे वाली स्थिति कौन सी है, साक्षात्कार की। तो उसे वो साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक कि वो इस स्थिति से नहीं गुजरेगा। कौन सी स्थिति से, ये कल्पना में रहेगा जब तक नहीं कि मैं सुख में जी रहा हूं और सुख में जीने का मेरा प्रयोजन क्या है, घृतम पीबेत, कि घी में पकी हुई वस्तुएं खाकर असली सुख उसी में मिलता है। हालांकि एक दृष्टिकोण से असली सुख उसी में है, ये श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जब उर्वशी को महाराज ययाति इस पृथ्वी पर लेकर आए, उर्वशी जो कि इंद्रलोक की अप्सरा, तो उर्वशी का एक नियम था कि मैं केवल घी में पकी हुई वस्तुएं ही खाती हूं, सफोला नहीं, कोई रिफाइंड ऑयल नहीं, ये सब कुछ नहीं, डालडा बिल्कुल नहीं। महाराज ययाति को लिस्ट दे दी, मेनू दे दिया पहले कि मुझे यदि नीचे ले जाना है तो घी में, और वो घी भी वहीं का होना चाहिए, क्योंकि यहां का भी आजकल घी मिलावट सब कुछ उसमें। तो यहां पर चार्वाक मुनि कह रहे हैं कि इंद्रिय भोग का कार्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि जब तक जियो सुख में जियो, क्योंकि चार्वाक मुनि यहां पर जानते हैं कि हमारी पतन दशा क्या है, और हमारी पतन दशा को जानते हुए चार्वाक मुनि कह रहे हैं कि जितना मिले समय, बाकी समय जितना मिले, किससे बाकी समय? दुर्दशा से बचकर। मैं अभी ट्रेन में बैठा था, ये सेवाग्राम एक्सप्रेस में, और अगल बगल जितने भी पैसेंजर, वो उनकी चर्चा जो चल रही थी, केवल यही चर्चा कि मेरे जीवन में ये तकलीफ आई, अब नहीं है। अरे मेरे जीवन में तो अब भी है, अरे चली जाएगी, मेरे जीवन में भी चली गई। तो किसी के जीवन में समस्या चली गई, किसी के जीवन में समस्या अब तक है, किसी के जीवन में आने वाली है। तो इसलिए यहां पर चार्वाक मुनि बोल रहे हैं कि ये सारी समस्याओं का जो काल है, इसके बीच में जो भी समय मिले, यावत जीवेत सुखम जीवेत, क्योंकि उसमें जी रहा है ना जीव, तो केवल जियो मत, सुख से जियो। और फिर वो कार्यक्रम पूरा दिए हैं कि कैसे सुख से जीना है। अब वो हम उसको अपने अनुसार अनुवादित कर सकते हैं कि हमारे लिए हमारा घी क्या है। घी का अर्थ ये नहीं कि चलो सभी लोग अब घी खरीदो, और नहीं, वो घी का अर्थ है, वो सिद्धांत समझना है कि हम सब के लिए हमारा व्यक्तिगत घृत है, इंद्रिय भोग है, सुख में जीने का हमारा कार्यक्रम हमने जो बनाया है। तो अब इस स्थिति से, ये जो स्थिति है जीव की, इंद्रिय भोग के उसके कार्यक्रम की स्थिति, इसके पश्चात अब साक्षात्कार की शुरुआत होती है। ये बहुत ही रोचक एक श्लोक है श्रीमद् भागवत से, और ये श्लोक दक्ष प्रजापति ने श्रीपाद नारद मुनि से कहा है। और कब कहा? श्रीपाद नारद मुनि दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिए। देखिए, दक्ष प्रजापति वो है प्रजापति, तो जैसे कि लोग अपने नाम के बाद अपनी डिग्री लगाते हैं, डॉक्टर, फिर उसके बाद में उनका डिग्री होता है, एमबीबीएस, एमडी, जो भी नाम होता है उसके बाद में डिग्री होता है, वैसे ही श्रीमान दक्ष और उनकी डिग्री क्या है? प्रजापति। कि वो प्रजा के वृद्धि करने के लिए उन्हें बनाया गया है। तो देखिए, एक दक्ष प्रजापति, सबसे पहले उन्होंने 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति की, और नारद मुनि, इनको समाचार मिला कि ये 10,000 दक्ष प्रजापति ने भेज दिए हैं नारायण सरस तीर्थ पर तपस्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये तप कर अपनी इंद्रियों को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें, और फिर आकर मेरे बिजनेस को संभाले। कौन सा? प्रजापति। तो नारद मुनि वो पहुंच गए कि भाई इससे बड़ा महासत्संग प्रोग्राम कहां मिलेगा। तो नारद मुनि पहुंचे वहां पर, और नारद मुनि ने केवल कुछ पहेलियां उनके सामने रखी, कुछ 8-10 पहेलियां बस, कोई बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। क्योंकि नारद मुनि ऐसे प्रचारक हैं कि उनको लंबा चौड़ा कोई लेक्चर या ऐसा प्रेजेंटेशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने केवल 8 पहेलियां, एक छिद्र है जहां से कोई एक बार अंदर चला गया तो कोई बाहर नहीं आ सकता, एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है, एक घूमता हुआ एक नोकीला उपकरण है, इस प्रकार की पहेलियां, समझे आप लोग? यही प्रवचन था नारद मुनि का। बस ये मतलब आप कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसा संडे फीस्ट क्लास रखें जिसमें केवल 8 पहेलियां, हरे कृष्णा महाप्रसादे गोविंदे। हालांकि महाप्रसादे गोविंदे के सामने सारी पहेलियां उसका समाधान मिल जाता है। तो नारद मुनि ने केवल वो 8 पहेलियां उनके सामने रखी और वो समझ गए कि उन्हें वैराग्य के जीवन को अपनाना है। तो वहीं से उन्होंने दक्ष प्रजापति को टेलीग्राम भी नहीं किया, वहीं से वो वैराग्य के पथ को अपना लिए। और दक्ष प्रजापति जब उन्हें पता लगा तो दक्ष प्रजापति थोड़ा क्रुद्ध हुए नारद मुनि के ऊपर, परंतु इतना ज्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं। परंतु फिर 1000 और पुत्र उत्पन्न किए। अब नारद मुनि देखिए कि उनके प्रचार की निपुणता, पहले 10,000 पुत्रों को पहेलियां, 8 पहेलियां कही, और ये जो 1000 इनको नारद मुनि ने केवल यही कहा, तुम्हें अपने भाइयों के साथ नहीं रहना। तो उन्होंने कहा हां चलो, अपने भाइयों के भ्राताओं के पद चिन्हों पर चलो। चले, कहां आजकल ऐसे भाई मिलते हैं। तो अब दक्ष प्रजापति, अब उनका पारा चढ़ गया जब उन्होंने देखा कि दूसरा जो लॉट था वो भी ब्रह्मचारी आश्रम। देखिए हम राधा गोपीनाथ मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम में 120 130 अभी और 30 आ रहे हैं, 160 हो जाएंगे, तो मीटिंग पे मीटिंग बैठ रही है कि इनको कहाँ रखेंगे, कितने लॉकर कहाँ कहाँ रखे जाएंगे। यहां पर सोचिए ऐसा ब्रह्मचारी आश्रम 11,000, जानकीनाथ प्रभु चिंता में चले गए क्योंकि वो यहाँ के सर्विस इंचार्ज है। तो सोचिए 10,000 ब्रह्मचारी आश्रम के सर्विस इंचार्ज। तो अब दक्ष प्रजापति अपनी क्रुद्ध अवस्था में वो नारद मुनि को श्राप देते हैं, बहुत उल्टा सीधा कह देते हैं नारद मुनि को। और फिर ये श्लोक, इस श्लोक में दक्ष प्रजापति कहते हैं, नानुभूय न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णताम निर्विद्यते स्वयं तस्मान न तथा भिन्न धी परई। ये श्लोक में, ये भागवत का श्लोक है और अक्सर बहुत इस श्लोक को लेकर प्रचारों के सामने आते हैं कि देखो इस श्लोक में क्या कहा है, भागवत में कहा है। इस श्लोक का अर्थ है, दक्ष प्रजापति नारद मुनि से कहते हैं, नानुभूय न जानाति, कि जब तक कोई जीव इंद्रिय भोग का अनुभव नहीं करेगा, जब तक कि जीव इंद्रिय भोग में नहीं लगेगा तब तक न जानाति, तब तक वो जान नहीं पाएगा कि इससे विरक्त कैसे होना है। न अनुभूय न जानाति विषय तीक्ष्णताम, ये जो विषय है और ये जो इंद्रियां हैं और इनका जो संसर्ग है, इसकी जो तीक्ष्णता है, जब तक वो उसका अनुभव नहीं करेगा तब तक वो उससे बाहर नहीं आ सकेगा। निर्विद्यते स्वयं तस्मान, स्वयं उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। ये तुम्हारे लेक्चर वेक्चर देने का कोई जरूरत नहीं, फिर अपने आप जब उस अग्नि से वो बाहर निकलेगा, इंद्रिय भोग की अग्नि से, तो अपने आप जलकर फिर उन्हें हिंग जाएगा उसके अंदर। न तथा भिन्न धी परई, इसके अलावा इस भौतिक संसार से वैराग्य लेने की और कोई विधि नहीं है। हरे कृष्णा। सोचिए भागवत का श्लोक दक्ष प्रजापति नारद मुनि को सुना रहे। तो इसमें हालांकि दक्ष प्रजापति पूर्ण रूपेण गलत भी नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में ही उदाहरण है ऐसी स्थितियों के। सौबरी मुनि उन्होंने इंद्रिय भोग के स्कूल में भर्ती हुए, परंतु जान लिया कि नहीं, यहां कोई डिग्री नहीं मिलने वाली। तो सौबरी मुनि फिर वो इस साक्षात्कार तक पहुंचे। तो उनके साक्षात्कार की शुरुआत हुई जब पूर्ण रूपेण उन्होंने सब अपने इंद्रियों को भोगा। अजामिल अपनी वृद्ध अवस्था में अपने मृत शैया पर लेटा हुआ अजामिल उसे साक्षात्कार हुआ, तब जाकर मैंने गलती की। विश्वामित्र मुनि, तो यहां पर ये सारे उदाहरण हैं। उदाहरण के साथ दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं नारद मुनि को कि देखो, ये सब साक्षात्कारी हुए। तो नारद मुनि कहते हैं, मेरा उदाहरण नहीं लिया, मैं तो नहीं गुजरा कोई भी ऐसे स्थितियों से। तो हालांकि कोई इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, परंतु करोड़ों अरबों में कोई एक होगा जो ऐसा साक्षात्कार लेगा जो दक्ष प्रजापति इसमें कह रहे हैं। अर्थात ये बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है कोई जीव यदि वो इस पथ को अपना रहा है। तो संभोग से समाधि, कि समाधि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय इंद्रिय भोग में लगो। एक उदाहरण दिया गया है कि यदि इस फिलॉसफी को कोई पालन करता है दक्ष प्रजापति द्वारा वर्णित, कि इंद्रिय भोग में लगते रहो और विषय तीक्ष्णताम, जब तीखापन पता लगेगा इंद्रियों का और इंद्रिय भोग का, तब साक्षात्कार होगा। तो एक उदाहरण दिया गया है कि उसी प्रकार से है जैसे कि एक शेर को यदि आपको शाकाहारी बनाना है, कल्पना कीजिए कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, चलो इस शेर को शाकाहारी बनाओ। तो आप चाहे कितने भी पालक की सब्जी बनाओ, मेथी की सब्जी बनाओ, पनीर की सब्जी, या उसल बनाओ या मिसल बनाओ, जो भी बना के खिलाओ उस शेर को, सबसे पहले जो खिलाने जाएगा शेर उसके पास देखेगा, जो सर्वर होगा। अक्सर हमारी नजर कहाँ होती है, बाल्टी पर होती है कि बाल्टी में क्या है, सर्वर को कोई देखता नहीं। परंतु शेर को यदि कोई शाकाहारी बनाने के लिए ये सब कुछ सर्विंग करने जाए तो शेर उस सर्वर को देखेगा और महाप्रसादे गोविंदे उसको देखते हुए बोलेगा। तो एक उदाहरण दिया गया है कि ये तो ठीक है कि कोई शेर, ऐसे भी शेर हैं जो बचपन से, जो शेर का पिल्ला होता है, कई लोगों ने शेर के पिल्लों को शाकाहारी खिला खिला कर शाकाहारी बनाया है, वो बड़े होकर भी केवल चपाती घास फूस ये सब खाते हैं, ऐसे भी उदाहरण है। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी शेर को मांस खिलाकर शाकाहारी बनाना चाह रहा है तो कभी संभव है? एक तो शेर ऊपर से मांस खिला रहा है और मांस खिलाकर उसको शाकाहारी बना रहा है, असंभव। तो वैसे ही यह उदाहरण दिया गया है कि हमारी जो इंद्रियां हैं उस मांसाहारी शेर के समान है, और उसमें यदि हम और इंद्रिय भोग डालेंगे तो, और इस आशा में कि एक दिन हम इंद्रिय भोग से ऊपर उठ जाएंगे। ये उसी प्रकार से है कि जैसे किसी मांसाहारी शेर को कोई मांस खिला रहा है और आशा में है कि वो एक दिन शाकाहारी बनेगा, नहीं, असंभव है। तो इसलिए यहां पर साक्षात्कार दक्ष प्रजापति किसका दिला रहे हैं कि तीक्ष्णताम की है, इंद्रिय भोग में मधुरता नहीं है, ये नहीं कहा। पुमान विषय मधुरताम, क्या कहा, पुमान विषय तीक्ष्णताम, तो यहां पर ये प्रगति का जो पथ है, हमारे इंद्रिय भोग या इंद्रियों के प्रगति का जो पथ है, उसमें हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे जो इंद्रिय भोग का कार्यक्रम है उससे थोड़ा और हम अग्रसर बढ़े हैं और समझ में आया है कि ये तीखा है, ये जला रहा है, चटका लग रहा है, इसमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। अब इससे आगे भगवान श्री कृष्ण का क्या मत है इंद्रिय भोग के विषय में? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आदि अंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। कि यहां पर भगवान कह दिए हैं कि ये दुख की योनि है, केवल तीक्ष्णताम नहीं। दक्ष प्रजापति ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कहकर कहा कि हां इंद्रिय भोग भी है पर थोड़ा तीखा, परंतु यहां पर भगवान कहते हैं दुख, केवल दुख, इसके अंदर दुख के अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो कोई व्यक्ति पूछे कि भगवान ऐसा कैसे कह सकते हैं दुख के अलावा और कुछ नहीं है? क्योंकि इस भौतिक संसार का जो इंद्रिय भोग है उसका आदि है और उसका अंत। तो भगवान कहे हैं जातस्य हि ध्रुव और मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिस किसी वस्तु का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित। अब यदि हम जन्म और मृत्यु इन दोनों स्थितियों को लें तो दोनों दुख की स्थिति है उस जीव के लिए। जन्म के समय वो रोता है, हम सब रोते हुए हम सब पैदा हुए हैं और रोते हुए सब जाते हैं। कोई बोले हंसते हुए हम सब जाएंगे, सब रोते हुए जाते हैं। जैसे हमारे एक बंबई के एक भक्त, वो बता रहे थे कि उनके परिवार में उनके कोई ताऊ जी थे, तो उनके मरने का समय आया तो उनके जो पुत्र थे वो सब कह रहे थे कि वो हरे कृष्णा मंदिर में आया करते थे, तो बोले कि अभी आपका समय आ गया, बोलो हरे कृष्णा, बोलो बोलो पूरा महामंत्र बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उनके मुख से कुछ निकल नहीं रहा था महामंत्र, परंतु ऐसे ऐसे कर रहे थे उनके हाथ, दोनों हाथ से ऐसे, एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे। तो एक भक्त वहां पर अब इस स्थिति को देख रहे थे कि ये इनके बेटे इनको हरे कृष्ण महामंत्र कहने के लिए बोल रहे हैं और ये एक हाथ ऐसे एक हाथ है, ये क्या चल रहा है, और एक हाथ ऐसे करते हुए मर गए। तो फिर सब कुछ उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो ये भक्त ने फिर सब कुछ होने के पश्चात पूछा, उसी समय पूछना चाहते थे परंतु अब सब शोक में है, अब ये थोड़ा टेक्निकल प्रश्न हो गया ये। तो फिर सब थोड़ा सारे संस्कार होने के पश्चात पूछे, एक बात बताओ वो आपके पिताजी वो ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे? तो पुत्रों ने कहा कि क्या है कि पिछले 30 साल से हमारे पिताजी कपड़े के व्यापारी थे और 30 साल दुकान में उन्होंने वो कपड़ा नाप रहते हैं हर समय, कितना मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो कपड़े के व्यापारी और केवल उन्होंने 30 साल केवल ये हाथ ऐसे ही किया, इसलिए मरते समय मुंह से कुछ नहीं, केवल हाथ यहां से एक हाथ यहां पर। अरे अब क्या नापोगे, ये जो शरीर रूपी जो कपड़ा है वो भी नाप तोल के कोई नहीं ले जा सकता, उसे भी यहीं उतार कर जाना पड़ेगा। इसलिए हमारी स्थिति ऐसे ऐसे नहीं हो, इसलिए ऐसे होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि उसका आदि है। भगवान ये नहीं बोल रहे कि इंद्रिय भोग नहीं है। भगवान कहते हैं संस्पर्श जा और भोगा। भोग का अर्थ क्या है? भोग, आनंद। तो भगवान कहते हैं कि उसमें आनंद है, भोग है, परंतु वो भोग और वो आनंद किस प्रकार का है, उसका आदि है, उसका अंत है। तो कोई कहे अरे बीच में तो है ना। नहीं, वो आदि और अंत होने के वजह से बीच में ज्यादा दुख मिलता है। क्यों? चिंता। मैं व्यक्तिगत एक उदाहरण देना चाहूंगा। पहले हम जब खेल कूद कर ये सॉफ्ट ड्रिंक पीने जाया करते थे कैंटीन में वायुसेना में, तो पूरे पसीने पसीने हुए, अब ठंडा पिया जाए, तो फिर कैंटीन में जाकर वो लिमका, तो अभी भी उतनी बड़ी बॉटल आती है, ओ थोड़ी ज्यादा आती होगी आजकल, 1 लीटर सबसे ज्यादा कितना आता है? 2 लीटर। इतना पीता है कोई? पीने के लिए लेते हैं। तो उस समय वो 500 ml की बोतल आया करती थी। तो मुझे याद है कि अब यदि जो भगवान कह रहे हैं, यदि इस उदाहरण को हम लें तो बराबर फिट होता है। अब ये लिमका पीने का जो भोग है ना, कितनी उत्सुकता से जब हम ऑर्डर करते हैं, अरे अभी निकाला, फ्रिज से निकाला, एकदम ठंडा ठंडा धुआं निकल रहा है, देखो कैसे, और फिर वो उसका बिल्ला खोलता है तो फिर तो ऐसे फंस करके आवाज आती है, तो हमारा आनंद और बढ़ता है। अरे तो आदि, अब उस भोग की शुरुआत हुई है ना। तो मुझे याद है कि जैसे वो लिमका पीना हम शुरू करते थे, एक घूंट पिया, फिर देखते हैं कितना बाकी है, बहुत है, अरे काफी है, फिर दूसरा, कितना, जितने भी घूंट हम पीते थे, बहुत लोगों की आदत होती है ना, वो एक साथ ज्यादा नहीं पीते, देखते रहते हैं काफी है, फिर जब वो कम तो होगा, चाहे वो कोला हो या महाकोला हो, केवल महामंत्र कम नहीं होता। तो वो धीरे धीरे वो बोतल में वो लिमका कम होते जाता है, तो फिर अरे इतना ही बाकी, अब उसका अंत आ रहा है, उस भोग का अंत आ रहा है, फिर रुक जाते हैं, थोड़ा टाइम लगाएंगे। फिर थोड़ा टाइम बाद पिएंगे, इतना अभी, फिर थोड़ा यहां वहां बातचीत करके देखते रहते हैं, अभी भी है। अब मुझे याद है मैं अपने पिताजी के साथ जाया करता, मैं पिताजी ले जाया करते थे कई बार, वो स्टोर्स डिपार्टमेंट के हेड थे, स्टोर्स एग्जीक्यूटिव थे, तो अलग अलग व्यक्तियों के कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए कई बार वो मुझे भी ले जाया करते थे। तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर के पास जाया करते, तो ये लोग ये सॉफ्ट ड्रिंक सबसे पहले ऑफर करते थे, तो उसमें वो स्ट्रॉ लगाते थे, वो पाइप। तो अब मुझे तो कुछ समझता नहीं था उनका क्या बातचीत चलती है, तो जैसे वो सामने आ गया, जो भी वो सॉफ्ट ड्रिंक और स्ट्रॉ लगाया, मैं अपना शुरू कर देता था काम, मतलब उनका कार्यक्रम चलता रहेगा, अपना कार्यक्रम चलता रहेगा। तो अब उनका एकदम वो बिजनेस का कुछ सीरियस डिस्कशन चालू रहता था, और वो स्ट्रॉ से जब कोई पीता है तो जब अंत तक आता है तो कर्र करके आवाज आती है। तो मैं वो बॉटल को टेढ़ा कर कर जितना भी कोने में भी बजाए वो एम लगा कर वहां से निकाल कर और मैं अपने समाधि में मग्न, मुझे पता नहीं वो दोनों मुझे देख रहे हैं, तो मैं जब भी वो मिलता तो फुर्र करके आवाज लास्ट में आती थी। तो फिर पिताजी एक बार मुझे बोले कान पकड़कर, अगली बार वो जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल आएगी ना इतना छोड़ना है। वो आवाज मुझे सुननी नहीं चाहिए। तो अब ये बहुत बड़ी समस्या थी मेरे लिए कि अब उनकी उनकी तो कथा चल रही है, इतना सब बाकी है, तब उसको छोड़ना है। तो पिताजी देखते रहते थे और इशारा करते थे पीना मत उसको, तो मैं भी रख देता था। फिर थोड़ी देर बाद देखता था तो उसमें ज्यादा समस्या थी, इतना पी लिया उसका मैं शुक्रगुजार नहीं मनाता था, लेकिन अब इतना सा बाकी वो नहीं पीने देते। तो जैसे वो सॉफ्ट ड्रिंक का आदि है और अंत है, और वो अंत आते समय वो फिर और दुख देता है। तो वैसे ही भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्श जा भोगा, भोगा लिया, सॉफ्ट ड्रिंक हाथ में लिया, आदि अंत वंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। जो बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सॉफ्ट ड्रिंक खरीदता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हालांकि वो है सॉफ्ट ड्रिंक परंतु बहुत हार्ड बाद में हो जाता है हमारे चेतना में। तो यहां पर भगवान अपना मत दे रहे हैं कि साक्षात्कार इंद्रिय भोग का हमें इस प्रकार से लेना है। तो दक्ष प्रजापति ने जो कहा वो भी एक कदम आगे है, परंतु यहां पर भगवान जो साक्षात्कार दिला रहे हैं अपने मतानुसार, क्योंकि भगवान ने ही पूरी सृष्टि की रचना की है, हमारे शरीरों की इंद्रियों की रचना की है और विषय वस्तु की रचना की है, तो भगवान जानते हैं, वो मैन्युफैक्चरर है, वो जानते हैं। तो अब इसके पश्चात समाधान, हमारे इंद्रिय भोग के समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसमें ये प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है कि इंद्रियों को हम अब किसकी सेवा में लगाएं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त्वम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। हमारी जो ये इंद्रियां हैं इनको ऋषिक भी कहा गया है, तो इन इंद्रियों को इस ऋषि ऋषिक को ऋषिकेश इनकी सेवा में लगाना, तो ये हमारे इंद्रिय भोग की शुद्ध अवस्था की शुरुआत है। तो यहां पर ऋषिकेश की सेवा में ये ऋषिक कैसे लगेंगे, जब हम सभी प्रकार की उपाधियों से विनिर्मुक्त, जैसे सेवानिवृत्त हो जाते हैं ना रिटायर्ड, तो वैसे ही जब हम मुक्त हो जाएंगे सभी प्रकार की उपाधियों, कौन सी उपाधि, जितनी सारी उपाधि हमने हासिल कर रखी है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं सुपरवाइजर हूं, उसमें भी लोग गर्व कर लेते हैं कि मैं ये हूं वो हूं, ये सारी जो उपाधियां और जो भी हम अलग अलग प्रकार के जो उपधर्म हैं उनको अपनाए हुए हैं, उन सब का परित्याग कर जब हम ऋषिकेश की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाएंगे, तो ये प्रगति का पथ है, इंद्रिय भोग की शुद्ध अवस्था की शुरुआत है। तो अब अगला प्रश्न कि कैसे हम हमारी इंद्रियों को उस ऋषिकेश की सेवा में लगाएं व्यवहारिक रूप से। ये तो इस श्लोक में तो कह दिया कि करना है, परंतु कैसे करना है वो बताइए। तो अब श्रीमद् भागवत में जो अंतिम शुद्ध अवस्था की स्थिति अम्बरीश महाराज वो अपने उदाहरण से बता रहे हैं। सवई मन कृष्ण पदारविंदयोर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत कथोदये। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें अम्बरीश महाराज के विषय में बताया गया है कि उन्होंने अपनी एक एक इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाया। यहां पर उस ऋषिकेश की सेवा में हमारी एक एक इंद्रियों को कैसे लगाना है, तो इंद्रिय भोग की शुद्ध अवस्था की शुरुआत इस प्रकार से है। अम्बरीश महाराज ने अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों पर लगाया। तो यदि हमें कोई आशंका है कि मन को कहां लगाना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों पर। वाणी को कहां लगाना है, श्री कृष्ण के कीर्तिगान। हाथों को श्री कृष्ण मंदिर मार्जन, कर्ण श्री कृष्ण लीला श्रवण, अक्ष या हमारी आंखें श्री कृष्ण विग्रह दर्शन, स्पर्श श्री कृष्ण भक्तों का स्पर्श। अब यहां पर देखिए, इसके आगे भी और भी ये सूची लंबी है, परंतु यहां पर यदि इस सूची को हम लें, इसकी चर्चा करें, तो कोई भी इंद्रिय नहीं छोड़ी अम्बरीश महाराज ने। हम ये नहीं कह सकते केवल मन लगा लूं तो नहीं चलेगा, नहीं। अम्बरीश महाराज ने अपने मन के साथ साथ ये बाकी सब, अपने हाथ, अपनी वाणी, कर्ण, अक्ष, स्पर्श, ये सब कुछ, इसमें यदि हम एक एक उदाहरण लें तो शास्त्रों में एक एक का उदाहरण दिया गया है कि किसी ने मन को केवल भगवान के चरण कमलों पर लगाया, और यहां गोदावरी के तट पर एक ब्राह्मण भक्ति रसामृत सिंधु में इनका उदाहरण है कि केवल मन को भगवान की सेवा में लगाया और उनका उद्धार स्वयं भगवान बुला लिए उस ब्राह्मण को। श्री कृष्ण कीर्ति गान, सुखदेव गोस्वामी ने अपनी वाणी को केवल भगवान श्री कृष्ण के कीर्ति के गान में लगाया और उनका उद्धार उस प्रकार से हुआ। परीक्षित महाराज केवल श्रवण कर। यहां तक कि कीर्ति गान के विषय में कहा गया है कि एक यवन वो मल त्यागने के लिए जंगल में गया और एक सुअर उस मल को खाने के लिए उस यवन की तरफ दौड़ा। सुअर वही सब खाते हैं, तो वो सुअर सुबह सुबह यवन अपना लोटा लेकर मल त्यागने गया। अब उसे पता नहीं कि सुअर का ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो वो सुअर भी अपना कूपन लेके भागते हुए गया। तो अब ये जो यवन, ये बाकी कोई जानवर को सहन कर सकते हैं, परंतु ये सुअरों को सहन नहीं करते, ये कभी सुअरों को सहन नहीं कर सकते। तो वो यवन ने जब देखा ये सुअर भागते हुए मेरी तरफ ही आ रहा है, तो उस यवन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे हराम हराम हराम, और वो ऐसे चिल्लाते हुए वो फिसल कर वो एक किसी टेकड़ी पर बैठा था, वहां से गिर गया और फिर इतने ज्यादा भय की अवस्था में वो गिरते हुए उसको हार्ट अटैक आया, परंतु मुख से क्या निकल रहा था, राम। उस हालांकि वो बुला रहा था हराम, वो सुअर को बोल रहा था, परंतु उसमें ह राम, प्रभु श्री राम का नाम। तो उसको वैकुंठवास मिला। देखिए अब कल को हम सोचे चल लोटा लेके चल यदि हम सोचे कहा है नासिक के सुअर कहा है तो यहां पर भगवान की कीर्ति का गान उसने अपने स्वेच्छा से या ध्यान पूर्वक नहीं किया। तो सोचिए जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल, कोई नियम कोई काल कोई स्थिति कोई समय कोई जगह कोई नियम नहीं रखा। यहां देखिए ये वर्ग ऐसी स्थिति में इसका उद्धार हो रहा है। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम बाकी कुछ भी नहीं कर सके तो ये जो हमारी जिह्वा है इसको हमें निरंतर हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे हरे। और हमारे एक भक्त बता रहे थे कि यदि हम इस कथा को देखें और गहराई से गौर से तो वो यवन उसका तो उद्धार हुआ ही, सुअर क्या वो खाली ब्रेकफास्ट कर चला गया? वो सुअर, उस सुअर ने राम का नाम सुना, उसने केवल सुना राम का नाम और उसने केवल राम का नाम सुनकर उसका उद्धार हो गया। सोचिए तो यदि और कुछ भी नहीं हो सके तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि केवल हम ये भगवान का नाम यदि लेते रहें तो हमारा उद्धार निश्चित है, बाकी सारी इंद्रियां अपने आप शुद्ध हो जाएंगी। श्री कृष्ण मंदिर मार्जन, एक व्यक्ति की कथा है इसके विषय में कि वो भगवान श्री विष्णु के मंदिर से गुजर रहा था, अंदर नहीं जा रहा था वो। तो ये व्यक्ति, इसने जो पादतरण पहने हुए थे चप्पल जो भी कुछ पहना उसमें कुछ कीचड़ लग गया था। तो अक्सर जब हमारे जूतों में या चप्पलों में कीचड़ लग जाता है तो उसे कैसे निकालते हैं हम? हाँ, किसी सीढ़ी या ऐसी चीज को घिसते हैं, तो घिसते हैं तो वहां से सब निकल जाता है परंतु सीढ़ी पे आ जाता है ना। तो हम ये नहीं बोल रहे कि कल से आप मंदिर आए हैं यदि तो यहां की सीढ़ियों पे आप घिसना शुरू करें, परंतु यहां पर इस कथा में ऐसा है कि वो उसके जो पादतरण के नीचे जो कीचड़ चिपक गया तो उसने विष्णु के मंदिर की जो सीढ़ी थी उस पे अपने पादतरण को निकालने के लिए, वो कीचड़ निकालने के लिए वो घिसा। तो हुआ क्या, वो जिस सीढ़ी पर वो पादतरण अपना घिस रहा था वो सीढ़ी का एक भाग टूटा हुआ था, तो इसके घिसने की वजह से वो पूरा हो गया वो टूटा हुआ भाग, तो मंदिर की सेवा हो गई इसके हाथों नहीं इसके पैरों से, मंदिर की सेवा हो गई और इतनी सी सेवा से इसका उद्धार हो गया। सोचिए, हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि कल से हम देखें कि अरे टूटा हुआ नहीं पहले तोड़ते नहीं, ये केवल महिमा बताई गई है कि यदि कोई स्वेच्छा से भगवान के श्री मंदिर का मार्जन करे या सेवा करे तो क्या क्या उसमें लाभ है। लीला श्रवण, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का दर्शन, इन सब के विषय में इतने सारे उदाहरण और कथाएं भरी हुई हैं। तो समझने का अर्थ ये है कि ये सारी अम्बरीश महाराज दिखा रहे हैं कि इंद्रियों को कैसे लगाना है, तो ये लिस्ट ध्यान में रहना चाहिए कि क्या मेरा मन चरण कमलों पर लग रहा है कि नहीं भगवान श्री कृष्ण के, मेरी वाणी उनके कीर्ति गान में लग रही कि नहीं, हाथ कर्ण अक्ष स्पर्श इस प्रकार से भगवान की सेवा में लग रहे हैं कि नहीं। मेरी जो नासिक इंद्रिय वो श्री कृष्ण के चरणों के तुलसी दल की गंध, देखिए अम्बरीश महाराज वो उस प्रकार से उनकी जो नासिका, उनके जो नाक, उसका उसकी शुद्ध अवस्था पर उसको ला रहे थे तुलसी दल की गंध सूंघने पर। पैर श्री कृष्ण के दिव्य तीर्थ स्थान पर जाने, शीश श्री कृष्ण विग्रह के सामने नमन करने मात्र से जिह्वा, हाँ ये थोड़ा समझ में आ रहा, श्री कृष्ण प्रसाद सेवन। और इसके विषय में तो इतनी सारी कथाएं हमारे इस्कॉन में विशेष रूप से, तो यहां पर और इच्छाएं निरंतर श्री कृष्ण सेवा। तो यदि इस ये लिस्ट जो अम्बरीश महाराज ने दी है अपने उदाहरण से हम सबको, यदि इस लिस्ट को हम ध्यान में रखेंगे तो यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारी पतन दशा याद है कि पतन दशा से लेकर इंद्रिय भोग की शुद्ध अवस्था तक शास्त्र हमें क्रमानुसार लिए हैं यहां पर प्रगति के पथ पर। तो हमें इन इंद्रियों को मारना नहीं है, इंद्रिय भोग को हमें बंद नहीं करना, केवल जो वस्तु है विषय वस्तु बदलनी है इंद्रिय भोग की। एक अंतिम कहानी से हम कथा को विराम देंगे यह समझने के लिए कि इंद्रिय भोग को नहीं छोड़ना बल्कि वही इंद्रिय भोग को सही तरीके से करना है। श्रील प्रभुपाद यही कहा करते थे, वी आर नॉट अगेंस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, वी आर अगेंस्ट रॉन्ग काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक बार श्रील प्रभुपाद ने यह भी कह दिया, आवर मूवमेंट इज सिंपली सेंस ग्रेटिफायर्स, वी आर सिंपली इन टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम सब केवल इंद्रिय भोग में लगे, परंतु किसके? भगवान श्री कृष्ण के। एक व्यक्ति वो पूछ रहे थे कि आपके मूवमेंट का उद्देश्य क्या है, प्रभुपाद ने कहा सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो वो अरे वाह, प्रभुपाद ने कहा नॉट योर्स, कृष्णास। तो फिर कहा अच्छा अच्छा। तो ये कथा ऐसी है कि दो मित्र वो अक्सर अपने खेल कूद में अलग अलग प्रकार की शर्त लगाए करते थे। अक्सर होते हैं मित्र शर्त लगाते हैं, चल ये करेगा तो ये दूंगा वो दूंगा। तो ये शर्त लगाया करते थे। तो एक मित्र ने दूसरे से कहा कि देखो ये जो घर ये बंगला दिख रहा है ना, ये बंगले का जो मालिक है वो बहुत खड़ूस आदमी है। तो दूसरे ने पूछा क्यों भाई ऐसा क्यों बोलते हो? अरे वो जो दीवार है उसका, जो बाउंड्री वॉल है बंगले का, उस बाउंड्री वॉल पर वो किसी को कुछ लिखने नहीं देता। तो दूसरे ने कहा भाई उसका बंगला है, उसका बाउंड्री वॉल है, तो क्यों लिखने देगा वो किसी और को कुछ? तो इसने कहा ठीक है हम शर्त लगाते, तू कुछ लिख के बता। तो उसने कहा क्या देगा? टॉफी, एक टॉफी दूंगा। तो अब शर्त लगी कि ये कोई लिख के बताए कुछ उसके ऊपर। तो अब इसने क्या किया कि इसने पेंट और ब्रश और ये सब लेकर दूसरे दिन इसने लिखना शुरू किया। और वो भी जब वो जो मालिक था वो पानी मार रहा था बाहर गार्डन में उस समय, तो ये दूसरा मित्र ये देखने का बड़ा साहस है इसके अंदर। तो इसने वो जो मालिक था उसको थोड़ा संकेत किया, थोड़ा देखो क्या हो रहा है बाहर। तो मालिक को कुछ समझा कुछ तो हो रहा है दीवार पर, तो बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि ये लड़का पेंट और ब्रश से दीवार पर लिख रहा है, तो वो अंदर गया। तो ये दूसरा मित्र सोचने लगा, ये अंदर चला गया, पहली बार। अक्सर तो ये हो सकता है कुछ मारने के लिए कुछ लेके आ रहा होगा शायद। तो वो अंदर गया वो मालिक, और अंदर से वो 500 रुपए का इनाम दिया उसने इस बच्चे को जो पेंट और ब्रश से अब उसके दीवार पर लिख रहा था। तो आप लोग को प्रश्न उठा होगा कि भाई इनाम कैसे, क्योंकि वो बच्चा पेंट और ब्रश से क्या लिखा, इस दीवार पर कुछ भी लिखना सख्त मना। तो उसने लिखा, परंतु क्या लिखा उसके ऊपर निर्भर किया कि उसे इनाम मिला या दंड। तो इससे क्या समझ में आया हमें, क्या तात्पर्य, पेंट ब्रश भूल जाइए अभी। इससे यह समझ में आ रहा है कि इंद्रिय भोग को नाकारा नहीं गया है, वही जिह्वा वही आंखें नाक और सारी हमारी इंद्रियां हैं, उसे हम किस तरीके से किस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि इस बच्चे ने वही पेंट ब्रश से लिखा, परंतु जो उस मालिक को प्रसन्न करे वो वाक्य लिखा। तो वैसे ही हम अपनी इन इंद्रियों से ऐसे कार्य करें जो हमारे मालिक श्री श्री निताय गौर चंद्र श्री श्री राधा गोपीनाथ इनको प्रसन्न करने की जो विषय वस्तु है, यदि वो हम करते रहें तो फिर ये मालिक भी हमें इनाम देंगे। और इनका इनाम क्या है, इनकी कृपा। और उस कृपा उस इनाम को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हालांकि हम डायरेक्टली भी नहीं उस इनाम को प्राप्त कर सकते, परंतु उस इनाम को हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम उन जो हमारे मालिक हैं उनके सेवकों की सेवा में लगेंगे। वो जो श्लोक है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका आविर्भाव दिवस आने वाला है अगले महीने में, उन्होंने हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए और हम सब साधकों के लिए कौन सा नियम दिया है, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास 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 अनुदास, कि जब हम भगवान ऋषिकेश की सेवा से पहले उन ऋषिकेश की सेवा में जो लगे हुए हैं उनकी सेवा में हम लगे, तो ये हमारे सदगति और प्रगति पथ का ये मार्ग है। और ऐसे ही महान वैष्णव का उत्सव हम कल मनाने जाने वाले हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो महाशिवरात्रि का कार्यक्रम कल संध्या के समय यहाँ पर होगा, और आप लोग सबसे ये अनुरोध है कि आप लोग सब भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य ही पधारें। और जो परम वैष्णव हैं, जिन श्रीमद् भागवतम जिनके विषय में बताते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, कि सभी वैष्णवों में परम हैं भगवान शिव जी। तो यदि आप लोगों को उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो कल संध्या के समय 7 बजे ठीक कार्यक्रम शुरू होगा। तो आप लोग सब सह परिवार और सह समाज पधारिए। हरे कृष्णा। और फिर से मैं आप सबके चरण कमलों पर अपना धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी सेवा स्वीकार की। श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा।